ओम शांति। हमने भक्ति मार्ग में ये सुना कि राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन इस दिव्य ज्ञान को समझने के बाद हमको ये सही प्रकार से समझ में आता है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, अनेक देवी देवताएं वो कौन हैं। तो ये पूरा रहस्य समझ में आता है। फर्स्ट डे जैसा कि बताया कि आत्मा हैं हम, हमारा सत्य परिचय आत्मा के रूप में है। मनुष्य आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन है। तो आत्मा शब्द कहते ही एक चित्र समझ में आता है, एक विजन में आता है कि आत्मा ज्योति है, प्रकाश है, एक एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट। अब जो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है उसका पिता भी कौन होगा, वैसा ही होगा। तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, इसलिए हम आज तक ज्योति का ध्यान, ज्योति की पूजा, दीपक जलाना या अनेक ज्योतियों का नमन करना, ये हम करते आ रहे हैं भक्ति मार्ग में। तो वास्तव में परमात्मा ज्योति का स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, और उनका नाम है शिव। सेकेंड डे कोर्स में हमने ये बताया कि परमात्मा निराकार है। निराकार माना उसका बॉडी नहीं है, हमारे जैसी शरीर धारण नहीं करते हुए, लेकिन उनकी एक एनर्जी है, वो उनका एक शक्ति का पुंज है वो, तो इसलिए उनको हम निराकार कहते हैं। साकार की कंपैरिजन में निराकार कहा जाता है, तो ये समझना बहुत आवश्यक है। निराकार का ये कदापि अर्थ नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है, बिना नाम और रूप की तो कोई चीज ही नहीं होती। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर है परमात्मा को जानना कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वे हमारे पिता हैं, उनका नाम है शिव। अब राम और कृष्ण की बात आती है, तो वास्तव में राम और कृष्ण नाम भी परमात्मा के ही हैं। ज्योति स्वरूप को ही राम और कृष्ण कहा गया है, क्योंकि परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं कलयुग के एंड में, और इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे अविनाश। तो ज्ञान सूर्य कौन है? परमात्मा है, ज्योति। और वो जब आते हैं तो अज्ञान रूपी अंधेरा संसार से मिट जाता है, इसलिए कहा गया है असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। तो ये किसको कहते हैं हम? ये हम परमात्मा को कहते हैं, ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा के लिए ये अर्चना, वंदना, ये प्रार्थना है। जब कलयुग का एंड होता है, यानी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, जब इस सृष्टि रंगमंच के चार जो प्रहर हैं, चार जो ये युग हैं, इनका जब अंतिम युग है कलयुग, और कलयुग का भी अंतिम समय जब अति धर्म ग्लानी हो जाती है, इसलिए कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। तो परमात्मा का अवतरण होता है, उसी अवतरण को हम गीता कहते हैं, उसी अवतरण को रामायण कहा गया है। रामायण अर्थात राम के आयन की कहानी। रामायण के अंदर चार राम दिखाए हैं, एक राम घटघट में डोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। अर्थात राम एक आत्मा को कहा गया, एक राम जो घटघट में डोले माना आत्मा को राम कह दिया, एक राम दशरथ घर डोले माना एक राजकुमार, इस सृष्टि पर एक राजकुमार भी हुए, त्रेता युग के जो राजा थे 14 कला संपन्न, वो श्री राम उनके लिए कहा गया, और एक राम का सकल पसारा माना सृष्टि को कह दिया गया, 5 तत्वों को, प्रकृति को राम कह दिया गया, और एक राम इस जग से आना मानी परमात्मा को राम कहा गया। इसलिए रामायण का जो राम है वो निराकार है। अगर आप रामायण में भी देखेंगे तो एक चौपाई आती है, उसके अंदर बताया है कि राम सच्चिदानंद दिनेशा नह तहि मोह निशा लवलेशा। सच्चिदानंद माना सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, दिनेशा माना प्रकाश स्वरूप है, और वो जहां पर है वहां पर निशा माना अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। फिर और कहा गया है कि कि बिन पग चलह सुनह बिन काना, बिन कर कर्म करहे वे दिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता अति योगी। यानी बिना मुख के बोलते भी हैं, बिना मुख के रसा स्वादन भी करते हैं, बिना पैरों के चलते भी हैं, बिना हाथों के कर्म भी करते हैं, तो ये निराकार की बात है। तो जब निराकार परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और वो आते हैं तो उनकी आने की विधि है, वो ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के रथ के द्वारा ज्ञान देते हैं, एक व्यक्ति को मुकर्रर करते हैं जिसके अंदर वो प्रवेश करते हैं और सिर्फ ज्ञान देने के लिए परमात्मा उनके अंदर प्रवेश करते हैं, जिनको ब्रह्मा कहा गया। अभी आप देखेंगे आगे ब्रह्मा विष्णु शंकर के विषय में हमने अलग से ऑडियो दिया है, तो उसको आप सुने अच्छे से। और जो कृष्ण है, कृष्ण का मतलब ही होता है जो आकर्षण मूरत है, जो सर्व को आकर्षित करता है, यानी जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, उसको कृष्ण कहा जाता है। तो वो भी परमात्मा का ही नाम है। तो गीता का भगवान एक्चुअली एक शरीरधारी कृष्ण नहीं है, बल्कि निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है। इसलिए गीता का भगवान कहता है कि हे अर्जुन, मैं निराकार हूँ, मैं अजन्मा हूँ अर्थात जन्म नहीं लेता, मैं अभोक्ता हूँ, कोई भोगना नहीं भोगता, अकाल मूरत हूँ, मुझे काल नहीं खाता, और मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरे द्वारा मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। ये गीता के अंदर लिखा गया है। और गीता का भगवान निराकार है, ज्योति स्वरूप है। अब हुआ क्या कि कलयुग के जस्ट बाद में सतयुग आता है, और सतयुग का जो पहला प्रिंस है, पहला बच्चा है इस सृष्टि का, वो श्री कृष्ण है। एक सुंदर बच्चा जन्म लेता है सृष्टि पर, तो उसको नामकरण तो होगा, उसको नामकरण किया जाता है, तो उसको नाम देते हैं कृष्ण, यानी परमात्मा का नाम, क्योंकि वो भी बड़ा आकर्षण मूर्त होता है, सुंदर होता है। तो ये निराकार और साकार जो कृष्ण सतयुगी प्रिंस है, पहला नंबर राजकुमार, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, और राम 14 कला से आए, तो ये दोनों राजकुमार भी थे, यानी सतयुग और त्रेता युग के फर्स्ट प्रिंसेस हैं ये दोनों। और कलयुग के एंड में राम और कृष्ण नाम से जो परमात्मा का अवतरण होता है, वही नाम बच्चों को दिया जाता है, लेकिन है टोटली अलग। वो देवताएं हैं, वो बच्चे हैं, और निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, शिव कहो या कृष्ण कहो या राम कहो, वो कलयुग के एंड में होते हैं। तो ये बहुत ही गुह्य बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं। जब हम परमात्मा के निराकार स्वरूप को समझ लेते हैं और उनका पार्ट, देखिए राम त्रेता युग में राम के साथ रावण नहीं था, और सतयुग में कृष्ण के साथ कंस नहीं था। एक्चुअली जो कृष्ण और कृष्ण के साथ कंस, राम के साथ रावण जो दिखाया है, वो परमात्मा के साथ कलयुग का एंड की सिचुएशन है। ये कलयुग के एंड का सिचुएशन है, क्योंकि देखें आप, आज परमात्मा कलयुग में आते हैं एंड में, रावण भी है, रावण माना बुराई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हर इंसान के अंदर है रावण, और कंस माना बुरी प्रवृत्ति के लोग, तो वो भी आज हैं। महाभारत समय ये चल रहा है, महाभारत काल इस समय चल रहा है, ये महाभारत का समय माना पूरे विश्व के अंदर युद्ध की स्थिति, उसको हम महाभारत कहते हैं। भारत पहले पूरे विश्व को कहा जाता था, महाभारत माना पूरा विश्व। तो जब परमात्मा आते हैं तो पूरे संसार में, आप देखिए हर व्यक्ति के मन में युद्ध चल रहा है, इसलिए गीता को द्वंद्व युद्ध शास्त्र भी कहा जाता है। और आज कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, कौरव माना बुरे प्रवृत्ति के लोग, पांडव माना शुद्ध प्रवृत्ति के लोग, शुद्ध विचारों के लोग, तो ये सब इनके विशेषण हैं, विशेषण सब विशेषताओं से युक्त, जैसा जिसके कर्म थे उसके गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम हैं, जो भी महाभारत के नाम हैं या जो भी नाम हैं हमने भक्ति में सुने हैं, पढ़े हैं, वो सब गुणवाचक कर्तव्यवाचक हैं। तो परमात्मा जब अवतरण होता है, उस घटना को हम सतयुग त्रेता में तो आवश्यकता होती नहीं, अगर देखिए सतयुग में कंस आ जाए तो फिर सतयुग में और कलयुग में क्या अंतर हुआ, उसको तो फिर सतयुग कह ही नहीं सकते, वहां भी लड़ाई झगड़ा हो, तो वहां भी एक दूसरे के प्रति कॉन्स्पिरेसी हो, तो कलयुग में ही ये सब होता है। राम के साथ रावण नहीं हो सकता, वो तो राजकुमार थे, प्रिंस थे। उनकी आज हम जितने देवी देवताएं हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके संपूर्ण स्वरूप गुणमूर्त स्वरूप की हम प्रार्थना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो उस समय तो बहुत सुंदरता थी, वहां तो इन चीजों का अज्ञान था, वहां विषय विकारों का भी अज्ञान होता है। तो ये सब द्वापर से शुरू होता है। जब आप हमारा कोर्स समझेंगे अच्छी प्रकार से, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग चक्र को आप समझेंगे, फिर एक चित्र हम देंगे सीढ़ी का जिसमें 84 जन्मों की कहानी है, मनुष्य 84 जन्म लेता है। तो इस प्रकार से ये सब बातें आपको समझ में आएंगी। ओम शांति।